आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 3 अगस्त 2026 के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया में H5 बर्ड फ्लू के मामलों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में इस वायरस से बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत का पहला मामला भी सामने आया है। एरियल सर्विलांस टीमों ने शुक्रवार 31 जुलाई को साउथ ऑस्ट्रेलिया के केप जाफा के पास समुद्र तट पर 84 ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न पक्षियों को मृत पाया था। जांच में इनमें H5 वायरस की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि वायरस के फैलने के साथ आने वाले दिनों में और मामले सामने आ सकते हैं। फेडरल कृषि मंत्री जूली कॉलिंस ने कहा है कि H5 बर्ड फ्लू से निपटने के लिए संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले महीने फेडरल, राज्य और टेरिटरी सरकारों ने इसके लिए अतिरिक्त $24 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की थी। यह $113 मिलियन के मौजूदा पैकेज के अतिरिक्त है।
I want to reiterate at this time, there is no evidence of any detection in our poultry or agriculture systems and that the risk to human health remains low. I also want to take the opportunity to thank Australians again for the work that they've done in being the front line of our biosecurity system over the last few weeks in reporting dead or sick birds.
ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 54 मामले साउथ ऑस्ट्रेलिया में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 10, विक्टोरिया में 7, न्यू साउथ वेल्स में 2 और क्वींसलैंड में 1 मामला सामने आया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट अर्नहेम लैंड में आयोजित 4 दिवसीय गर्मा फेस्टिवल में शामिल लोगों ने योलंगू जीवन और संस्कृति का अनुभव साझा किया है। यह फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े इंडिजिनस सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसमें परंपरा, कला, संगीत और संवाद के जरिए योलंगू समुदाय की विरासत को मनाया जाता है। सेटलमेंट काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की CEO मारिया डिमोपोलिस ने NITV न्यूज को बताया कि यह आयोजन समझ और जुड़ाव को गहरा करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि लोगों को हजारों वर्षों से चली आ रही कहानियों को समझने की जरूरत है। ऐसी कहानियां जिनमें दर्द के साथ साथ अद्भुत मजबूती और सांस्कृतिक समृद्धि भी शामिल है। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया आई एज्ड केयर वर्कर देशी हॉटमा पार डेरे ने पहली बार गर्मा फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उन्होंने SBS मैंडरिन को बताया कि यह अनुभव यादगार रहा और उन्हें इस साल के फेस्टिवल की थीम बुकमक से खास जुड़ाव महसूस हुआ, जिसका अर्थ योलंगू भाषा में सब लोग होता है। उन्होंने कहा कि योलंगू लोग बेहद स्वागत करने वाले हैं और विदेशी होने के बावजूद उन्होंने उन्हें अपनापन महसूस कराया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की वन नेशन पार्टी ने विक्टोरिया राज्य चुनाव से 4 महीने पहले अपने नेता और प्रमुख उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आर्मी वेटरन बॉरेन फिकरिंग नवंबर में होने वाले राज्य चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उनकी टीम में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रमुख उम्मीदवारों में शेपर्टन से सांसद रिकी ली टायरेल और शिक्षा विशेषज्ञ व कमेंटेटर कॉलिन हार्किन शामिल हैं। वन नेशन की नेता सीनेटर पॉलिन हैंसन ने कहा कि विक्टोरिया की उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में समय लगा, क्योंकि पार्टी ने चयन प्रक्रिया को काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीदवारों को लेकर लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार करीब 1200 लोगों ने चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई थी और सभी उम्मीदवारों की विस्तृत जाँच प्रक्रिया पूरी की गई है। सीनेटर हैंसन ने कहा कि फिलहाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जबकि अगले 1-2 हफ्तों में लेजिस्लेटिव असेंबली के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी फ्यूल एक्साइज छूट खत्म होने के बाद सरकार ने पेट्रोल स्टेशनों पर कीमतों की निगरानी बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा नियामक ACCC को निर्देश दिए हैं। कोषाध्यक्ष जिम चालमर्स ने ACCC को पत्र लिखकर कहा है कि पेट्रोल की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि कंपनियां कीमतों में अनुचित बढ़ोतरी नहीं कर सकें। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर $100 मिलियन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन चालकों को अब पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि फ्यूल एक्साइज डिस्काउंट सोमवार 3 अगस्त की रात 12:01 से समाप्त हो गया। लिबरल पार्टी की डिप्टी लीडर जेन ह्यूम ने कहा, कोलिशन ने इस छूट का समर्थन किया था जब तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक महंगा कदम है और इसे जारी रखने के लिए बजट में वैकल्पिक फंडिंग की जरूरत थी। अब खबरें भारत से। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अपने अभियान का समापन 39 पदकों के साथ किया है। अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई पदक नहीं मिला, लेकिन 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहे। समापन समारोह के साथ ग्लासगो खेलों का समापन हुआ और अगले 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की औपचारिक जिम्मेदारी भारत के अहमदाबाद को सौंपी गई है। इसी के साथ 3 अगस्त के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।